اللهم لك الحمد كما أنت، وصل على محمد كما أنت أحمد، وقل بنا وأنت أحمد، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. فرمایا کہ دنیاوی نفع پر خوشی اور دنیاوی نقصان کا غم سب مٹی گارا ہے، دنیاوی نفع پر خوشی اور دنیاوی نقصان پر غم سب مٹی گارا ہے، انہیں دل میں جگہ نہ دو، اصل خوشی یہ ہے جو تجھے کسی نیکی کرنے پر حاصل ہو، اور اصل غم کسی گناہ کا احساس اس کا غم، احساس گناہ ایک غم ہے، وہ غم اصل ہے. اور خوشی کہ کوئی نیکی کی توفیق مل گئی اس پہ جو خوشی ہوئی وہ اصل ہے. اللہ والے کی بات میں نے آپ سے عرض کی، مٹی گاری کا جو نقصان ہے، جسمانی نقصان ہے اس کو بیماری کہتے ہیں، کاروباری نقصان ہے، تجارت کا نقصان ہے، صنعت کا نقصان ہے، یہ نقصانات ہیں. ان نقصانات کا ازالہ ہے، کیا ہے ان نقصانات کا ازالہ؟ یہ ہے کہ آج کا فقیر کل کا امیر، آج کا تنگ دست کل کا غنی، اس واقعات کا ہی ہے. ہمارے ہاں یہ 7-8-10 منزلہ پلازا بن رہا ہے، اس کا مالک مجھے کہنے لگا، میں تو چائے بیچتا تھا آنے آنے کی، کروڑوں روپے کا کام کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ. آج کا فقیر ہے، کل کا مالدار ہے، ہزاروں واقعات ہیں، کیا نہیں ہے؟ میں اس دن کل کی بات ہے، رات کی بات ہے، میں اپنے آبا کو دیکھنے آیا، میں نے کہا سارے سو رہے ہیں، تو نیچے اتر رہا تھا، میرے ایک دل میں خیال آیا، میں نے کہا دنیا بقدر مقدر اور دین بقدر مشقت ہے. حقیقت جس کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے اس کے لیے ساری کائنات کا نظام اس کے لیے آسان ہو جائے، کہ دنیا بقدر مقدر. اور ایک مخدوم صاحب تھے، مرنے کے بعد نا ان کا صرف جو مال اور تو بہت تھا، صرف سونا 25 من تھا، ہاؤس تھے سونے کے، مربے تھے اتنے زیادہ، محلات تھے اتنے زیادہ، زمینیں تھیں، گھوڑیاں تھیں، گاڑیاں تھیں، لینڈ کروزریں، پتہ نہیں کیا کچھ بنا. تو ایک بندہ کہنے لگا میرا جی چاہتا ہے، میں نے ان سے خود سنا کہ اس کے منہ میں سیٹی ہو، وسل ہو، اور یہ بسوں کی لائنیں لگوائے اڈے پہ نا. کہہ رہے میرا یہ جی چاہتا ہے، کیونکہ وہ خود غریب تھا. تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا اس کو تو مقدر میں ملا ہے رزق، اور جو تیری مقدر میں ہے وہ تجھے مل کے رہے گا. اب ہم نے الٹا نظام شروع کیا. نظام یہ ہے کہ دنیا بقدر مقدر اور دین بقدر مشقت، اور ہم نے دنیا کو مشقت سے تشبیہ دے دی. اچھا اگر مشقت سے ہی مالدار آپ کو آدمی ہوتا، میں نے کلاس فیلو تھا، ہم اکٹھے پڑھتے تھے غالباً 6ویں 7ویں میں، بہت عرصے کے بعد میں اپنے ایک رشتے داروں کو ملنے گیا، دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ دہاڑی پہ کام کر رہا تھا، اس وقت بھی وہ دہاڑی پہ کام کرتا تھا، गरीब थे, सफेद पोश थे, उसने पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद जो है वो उसने दिहाड़ी पे काम करना शुरू कर दिया। उसका तालिबन 5.5 रुपए थी, 60 रुपए हो गई, 5.5 थी या कुछ ज्यादा हो गई, 25 रुपए थी गालिबन मुझे याद नहीं। वो अभी तक दिहाड़ी पे काम कर रहा है, मेरा क्लास कर रहा था। एक शख्स मेरे पास आया नेस्ले में जो है, ये नहीं हलीब में की जो मिल है तो उसमें वो मुलाजमत करता है, छोटी मुलाजमत करता है। 4 साल हमारी कुर्सियां करीब करीब होती थी, तो मैंने भी तालीम हासिल की, उसने भी तालीम हासिल की, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा, चौथा। और मैंने उससे पूछा कि तूने जो सीखा उसमें कोई प्रैक्टिस भी करता है कोई? उसने कहा जी असल तो रोटी है, मैंने एक जगह क्लीनिंग किया नाकाम, दूसरी की दिया क्या नाकाम, तीसरी जगह किया नाकाम, चौथी जगह किया नाकाम। मैंने कहा भाई ये तो मुझसे हो नहीं सकता, तो फिर क्यों ना ऐसा कर लूं मैं कि कोई और ही कारोबार कर लूं। फिर मैंने नौकरी कर ली। अगर तालीम ही से माल मिलना था तो आज आपको एक अजीब बात बताऊं, दुनिया के जो सबसे मालदार लोगों की लिस्ट है वो मुख्तसर सी है, पूरे वर्ल्ड के दुनिया के जो मालदार लोग हैं उनकी लिस्ट है वो मुख्तसर है, कौमी सतह पे, आलमी सतह पे। और जो कौमी सतह पे मसलन छोटा सा एक मुल्क पाकिस्तान है, इसके जो मालदारों की लिस्ट है, जो बड़े बड़े मालदार हैं, वो भी मुख्तसर सी है। और एक बात सुन के आप हैरान होंगे, जो आलमी सतह के वर्ल्ड लेवल की जो लिस्ट है उसमें 98% अनपढ़ लोग हैं और 2% ऐसे हैं जो तालीम याफ्ता हैं और वो भी आला तालीम याफ्ता नहीं। फिर उनकी औलादों ने तालीम हासिल की। आप पाकिस्तान लेवल से देख लें, एक सबका हुक्मरान ने गालिबन 1973-74-75 में पूरे पाकिस्तान की जितने भी मिलें थी वो कौमी तहवील में ले ली थी। तो उसमें जो 90% थी मिलें वो उन लोगों की थी जो कोई 5 जमातें पढ़ा हुआ, कोई 8 जमातें, कोई 10 जमातें, और कुछ ऐसा है जो अंगूठा छाप है, MBA किया हुआ और CA किया हुआ उनके नौकर हैं। अब भी ऐसे हैं है? तो अगर मुशक्कत ही माल हासिल करने का जरिया थी और डिग्री ही मालदार बनने का जरिया थी, तो फिर ये दिहाड़ी पे काम करने वाले तो बड़े मालदार होते। उस दिन मैंने देखा हमारी ईंटें ऊपर जा रही थी और ईंटें भी जो है वो बड़े मोटे कालिब की, 20 ईंटें वो फट्टे पे उठा के तीसरी मंजिल पे जा रहा था, 20 ईंटें। और मुझ जैसा जो है वो आदमी जो कायल सुस्त है वो 2 ईंटें अगर उठा के तीसरी मंजिल पे जाए 3 दिन तक बाजू की मालिश कराए अगर मैं उठा कर लूं। तो दुनिया के एतबार से जो तरक्की है वो नजर आती है और ईमान के एतबार से जो तरक्की है वो नजर नहीं आती। और दुनिया में घाटा नजर आता है, ईमान के एतबार से घाटा नजर नहीं आता। मेरी नजर भटकी और उससे घाटा हुआ वो नजर नहीं आया। कहने लगे तूने अगर झूठ बोला है तेरे ईमान की जेब कट गई है, तूने अगर तेरी नजर भटकी है तेरे ईमान की जेब कट गई है। अब ये जेब कटना नजर नहीं आता और दुनियावी एतबार से अगर जेब कटी है, जेब कटना नजर आए और माल जाना नजर आए और नुकसान होना नजर आए, तो कहा कि दुनियावी नेमत पर जो हम जो फख्र करते हैं, खुशी और दुनियावी नुकसान का गम, ये सब मिट्टी और गारा है। मिट्टी गारे पे कोई आदमी खुशी करे वो आर्मी खुशी है, और मिट्टी और गारे पे गम करे आर्जी गम है। अपने गमों और खुशियों के हम निशानात बदलें, अपनी मिजाज को बदलें, कि अगर नेकी मिल गई, मुझे नेकी की तौफीक मिली, तो मेरे अंदर इतनी खुशी हो, इतनी मसर्रत हो, इतनी खुशी हो, मैं खुशी से फूला ना समाऊं। एक नेकी की तौफीक मिल गई मुझे, चाहे वो नेकी किसी की खिदमत है, चाहे वो नेकी किसी के रास्ता को साफ करना है, चाहे वो नेकी सच है, चाहे वो नेकी किसी की इमदाद है, चाहे वो नेकी अमाल इबादत तस्बीह रोज़ा जिक्र तहज्जुद है, नमाज है, दुआ है, उसकी कोई भी किस्म है, कोई भी शक्ल है, ये है असल खुशी। किसी को सही मंजिल बता देना, ये असल खुशी है, ये भी एक नेकी है। हमारे यहाँ जो ये फोन पे बैठे रहते हैं हजरात, सारा दिन लोग पूछते हैं, अच्छा जी हमें ये फलां चीज रास्ता कैसे मिलेगा, ये फलां अमल कैसे होगा, फलां कैसे होगा। मैं सोचने लगा उस दिन, मैंने कहा भाई ये तो लोगों को राह दिखा रहे हैं। हमारे एक साथी ऐसे हैं, मैंने कहा भाई आपके जिम्मे तो पिक एंड ड्रॉप का निज़ाम लगा देना चाहिए। इतना बारीकी से बताते हैं कि आप इस तरह आएंगे, फिर इस तरह ले जाएंगे। मैंने कहा आप गाड़ी रख लें, उनको घर से लाया भी करें, ले जाया भी करें। इंतहाई तौर पे उनको ऐसी बारीकी से बताते हैं, मैंने कहा भाई आपको कोई कन्वेंस रख लें। उन्होंने कहा ठहरे बस, आपको परेशानी ना, मैं वहीं से आपके आपको ले जाता हूँ, फिर ले जाता हूँ। अमल मोमिन का छोटा है, लेकिन उसको अगर नेकी बना के करेगा तो उस पर खुशी होगी। उसका ताल्लुक खिदमत से है, किस चीज से है। तो गारे के जाने पे नुकसान होता है आज। ये मिट्टी और गारे से बनी हुई चीजें हैं, ये मूर्तें जो खूबसूरत हैं, ये मिट्टी और गारे से बनी हुई हैं। एक अल्लाह वाले कहने लगे, एक अंधा एक मिट्टी की मूर्त को बना हुआ देख रहा, कहने लगे अरे लोगो देखो ये क्या जुल्म कर रहा है, अरे लोगों देखो ये क्या जुल्म कर रहा है। और फिर अगली बात उससे अजीब कही कि ये खड़ी मिट्टी है और एक पड़ी मिट्टी है। मैंने वो आधी बात सुनाई है, अरे लोगों देखो ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वाले पे मर रहा है, और ये कौन सी मिट्टी है, खड़ी और एक पड़ी। जो पांव के नीचे वो पड़ी मिट्टी, जो इमारत की शक्ल में, मूरत की शक्ल में, बिल्डिंग की शक्ल में, लिबास की शक्ल में, गिलास की शक्ल में, आसाइश की शक्ल में, आरायश की शक्ल में, ये खड़ी मिट्टी है तो सारी मिट्टी या नहीं है। होना है तुम्हें खाक, ये सब खाक समझना, क्योंकि हमने बचपन से लेकर पचपन तक मिट्टी ही की कहानी देखी, मिट्टी ही से होना देखा, मिट्टी ही से खाना देखा, मिट्टी ही से पलना देखा, इसलिए मिट्टी के ऊपर ऐसा यकीन बैठा कि आखिरी वक्त तक मिट्टी की तरफ मायल है। चाहे वो मिट्टी खुराक की शक्ल में है, चाहे वो मिट्टी जन से मुखालिफ की शक्ल में है। ये चीजें दिल में कैसे जाएंगी, याद रखना, जब तक ये चीजें दिल में रहेंगी, ये आखिरी वक्त में कलमा नसीब होने से माने रहेंगी, याद रखना। आखिरी वक्त में कलमा नसीब हर शख्स को नहीं होता, आखिरी वक्त में खात्मा बिल खैर हर शख्स का बगैर मुमकिन नहीं, अल्लाह जिसके लिए कर दे। इसके भी असबाब हैं। आदमी सारा दिन जिसको बोलेगा, जिसको सुनेगा, जिसको सोचेगा, मिट्टी को बोलेगा, मिट्टी नोट की शक्ल में, मिट्टी मिल की शक्ल में, मिट्टी फैक्ट्री की शक्ल में, मिट्टी दफ्तर की शक्ल में, मिट्टी दुकान की शक्ल में, मिट्टी डॉक्टरी की शक्ल में, मिट्टी हिकमत की शक्ल में, मिट्टी जिस शक्ल में मिट्टी है ना भाई, ये जो पुराने वक्तों की इमारतों के जो खंडरात हैं मिट्टी हो जाते नहीं होते, جس وقت بنے ہوئے ہوں گے ان کا کیا حسن و جمال ہوگا. آج بھی بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. پھر ان کھنڈرات سے سکے نکلتے ہیں, کرنسیاں نکلتی ہیں جو کہ مٹی ہوتی ہیں اور مٹی ہو جاتی ہیں. ان کھنڈرات سے ہڈیاں نکلتی ہیں, مٹی تھیں, بنی کھڑی مٹی تھی, اب بڑی مٹی ہے. اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہماری ساری زندگی کا ساری کوشش مٹی پہ ہے, روح پہ نہیں ہے. اور یہ جو فقیر ہے نا, یہ بلا بلا کے, پکڑ پکڑ کے, محنت کر کر کے یہ کہتے ہیں مٹی پہ محنت اتنی کر جتنا مٹی سے تجھے فائدہ پہنچنا ہے, ضرورت ہے, ارے باقی محنت کر اپنی روح پہ. اور روح کا عالم کیا ہے؟ روح بیمار اور مریض ہے. اچھا, جسم کو 3 دن اگر کھانا نہ دو, زوف, نکاحت, کمزوری پیدا ہوگی, جسے ویکنیس کہتے ہیں, ہوگی نہیں اللہ والو, ہوگی. اور جسم کے پیدا ہونے والی خوراکیں, جسم مٹی سے بنا, جسم کی خوراک مٹی, پھل, غذا, گندم, دانے, چنا, دال, چاول, سارا نظام مٹی ہے, مٹی سے بنی نا. تو مٹی کی غذا مٹی. اگر مٹی کو مٹی نہ دو تو مٹی کے اندر سکت ہی نہیں چلنے پھرنے کی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ قافلہ جا رہا ہے, وہ اونٹ پہ بیٹھے اور اونٹ کو دوڑایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لانے کے لیے, اور پھر اونٹ سے گرے اور شہید ہو گئے. اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مفہوم ہے, آپ نے اسے دیکھا, مسکرائے, پھر منہ یوں کر لیا, ایک طرف پھیر لیا. اور اصل یہ کیا؟ آپ نے فرمایا, یہ اونٹ کے گرنے سے نہیں شہید ہوا, یہ بھوک سے شہید ہوا. اور میں نے دیکھا ہے جنت کے دسترخوان اترے ہیں اور حوریں اس کی طرف لپکی ہیں, اور ایک حور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا, میں نے منہ اس طرف کر دیا. ان کے پیش نظر بھوک دوسرے درجے میں تھی اور روح پہلے درجے میں تھی. بھوک دوسرے درجے میں تھی. میرا معاش, میرا قبیلہ, میرا ذریعہ, میرا رزق کا نظام, یہ سارا یہ دوسرے درجے میں تھا. اور روح, اور روح کی ترقی, اور روح کا کمال, یہ پہلے درجے میں تھا. چینی کی بوری لے کے سائیکل پہ جا رہا, اس کی بوری پھٹ گئی, اسے پتہ نہیں, سارا جہان کہہ رہا ہے پھٹ گئی ہے بوری. کیوں؟ مٹی کی قیمت ہے, مٹی پہ محنت کی. ارے چینی مٹی ہے نا, آپ چینی کو, چینی کی چٹکی یا موٹ بھر کے, ایک مٹھی بھر کے آپ مٹی میں ڈال دو, 3 دن کے بعد دیکھو وہ چینی رہتی ہے, مٹی بن جاتی ہے. اور مٹی سے نکلی. اب سارے جہان نے اسے کہا کہ تیری چینی نہیں ضائع ہو رہی, موٹر سائیکل کا اگلی بتی جو ہے, اگلا بلب وہ جل رہا, سارا جہان اس کو اشارے کر رہا, کہنے لگے جی میں آیا تھا اور آپ کے گھر کے باہر کی لائٹ جو ہے وہ صبح بھی جل رہی تھی. اس نے کہا میں بجھانا بھول گیا تھا, بتی بجھانا بھول گیا تھا. تو مٹی کا نقصان مٹی نے دیکھا اور مٹی برداشت نہ کر سکی. کوئی شخص مٹی, چینی مٹی, کوئی شخص مٹی اور چینی مٹی ہیں, اور دیکھنے والا مٹی. تو مٹی کا نقصان, مٹی کا نقصان, کسی مٹی نے دیکھا اور برداشت نہ کیا, احساس ہوا, جبکہ چینی تو کسی دوسرے کی تھی. ایک شخص کھڑا, وہ نئی گاڑی پہ ایک کیل سے لکیریں لگا رہا, گاڑی کسی اور کی, یہ محض گزر رہا راستے سے, इसके अंदर एहसास आया कि ये नई गाड़ी और इसका नुकसान हो रहा, इसने उसे मना किया। मिट्टी का नुकसान हो रहा तो दिन रात कीमत मिट्टी के सामने आई। मैंने उसने एक साहब से अर्ज किया, मैंने कहा तुझे मैं किसी और नजर से देखता हूं, तू मेरे पास पहले दिन ये कहने आया था ये मेरी नमाज में अल्लाह का ध्यान मुझे दिला दे, तू तो दुनिया लेके ही नहीं आया था। पहले दिन आया इसलिए था, उसने मैंने आपको ढूंढा है, किसी से सुना है कि मैं ये चाहता हूं मुझे अल्लाह की जात आली और नमाज का ध्यान मिल जाए। और मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा मेरे पास तो ऐसे बहुत कम लोग आते, मिट्टी वाले तो सारा दिन आते हैं मेरे पास। तो दुनिया की खेती पे मेहनत करते 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 हत्ता के मिट्टी हो गए। अरे जमीन वही की वही है, जिम्मेदार नहीं है, सनत वैसी की वैसी है, सनतकार नहीं है, जरात वैसी की वैसी है और जो जरात करने वाला काश्तकार है वो नहीं है, है? वही की वही जमीन है। जमीन का टुकड़ा लिया, कनाल दो कनाल, मरले दो मरले का, बड़ा खुश हुआ। गैर से जो आवाज आ रही वो ये आ रही, वो जमीन कह रही क्यों खुश हो रहा, मैं तो तुझ जैसे कई हड़प कर गई, मैं तुझ जैसे कई हड़प कर गई, इससे पहले तू किसकी मलकियत थी मैं वो तुझे खबर ही नहीं। वो मलकियत नामों के पट्टे जो हैं वो तांबे के लिखे हुए, पहले तांबे भी लिखे जाते थे, तांबे के पत्रे होते थे, वो भी गुम, लिखने वाले भी गुम, लिखवाने वाले भी गुम, रहने वाले भी गुम। तो बेहतरीन इंसान वो है जिसे नेकी पे खुशी हो, नेकी की उस पे खुशी हो, और कोई गलती हो गई, गुनाह हो गई, उस पे दिल बुझ जाए, उस पे दिल, और दिल भी ऐसा बुझे, ऐसा बुझे, ऐसा बुझे कि जिनकी खुशियां हों उनकी खुशियां भी गुम हो जाएं। एक वाक्य मैं अक्सर आपको सुनाया करता हूं, मैं डाकखाने में के बाहर जो लेटर बॉक्स, वो बॉक्स होता है, उसमें खत डालने गया, एक एक साहब को देखा, जवान को, वो कुछ ही तलाश कर रहा, मेरे खत हाथ में। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे अम्मा ने रुपया, हाथ में थोड़ी सी ना ऐसी छोटी सी कटोरी थी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे अम्मा ने रुपया दिया था, वो घी लेने जा रहा था। उसकी परेशानी की कैफियत ऐसी थी, मेरे खत हाथ में, मैंने भी ढूंढवाना शुरू कर दिया रुपया। अब इधर देखूं उधर देखूं रुपया कहीं मिले ना, मेरी जो नजर पड़ी वो घी की वजह से रुपया उस कटोरी के अंदर था और चिपका हुआ था। वो कटोरी नहीं थी, वो छोटी सी देगची थी, सिल्वर की ना, छोटी सी देगची थी, पहले घरों में ऐसी ही होती थी, उसी में रुपया दो रुपए का रोज घी आता था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा वो रुपया तो ये अंदर तेरे पड़ा हुआ इसके। ओ अच्छा, उसने फिर मुझे कुछ नहीं देखा, वो घी चला गया। मैंने खत डाल के कहा, मैंने कहा तुझे क्या हो गया था? फिर अंदर एक एहसास आया, उसके दिल का गम ऐसा अजीब और गरीब था, इतना गम था कि मैं खाली हाथ माँ के पास जाऊंगा, घी लेके नहीं जाऊंगा रुपए का, तो मेरी माँ मुझे मारेगी, क्या करेगी, क्या होगा। ऐसा दिल पे असर पड़ा तारिक के कि तारिक अपना काम भूल गया। उसने कहा नहीं मुझे ढूंढवा, अपना काम छोड़ दे, ना मेरी मिन्नत की। और मैंने उससे पूछा तो क्या ढूंढ रहा, क्या रुपया ढूंढ रहा हूं मैं तो। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, उसका जो है ना एयर कंडीशन, वो लोअर एसी का, वो फेल हो गया। अब होते तो दो ही दरवाजे हैं, एक साहब बैठे थे, वो यहाँ लाहौर में कोई ब्यूरोक्रेट हैं, वो वहीं इलाके के थे, उनके वालिद साहब और मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह दोस्त थे, उनका भी जिम्मेदारा था, उनका भी ऐसी बातें चल रही थी, हम बैठे बातों में, एक साहब को देखा, वो तकलीफ में बेचारा हाय हाय करने लगा, मेरा सांस घुट रहा है, मेरा सांस। अच्छा, हमने हमारी बातें भूल गई, और बाहर जो वो वो एसटी का संदूक पड़ा होता है ना, लकड़ी वाला संदूक ट्रेन में, उसके ऊपर जाके उसको बिठाया, वहीं मर गया बेचारा। जवान था, उसका सांस घुट गया, बाद में पता चला कि उसको वैसे ही कोई दिल की तकलीफ थी, कोई सांस की तकलीफ, उसकी अजल आ गई, वक्त आ गया। मैं सोचने लगा उसके अंदर से जो हाय हाय निकली थी ना, हाय हाय हाय, उस हाय हाय ने सारी पुरानी ताल्लुक, सारी पुरानी बातें, अब्बा और चचा की, मेरा अब्बा उसका बाप मेरा चचा, अब्बा और चचा की सारी कहानी भूल गई उसकी हाय हाय ने। और उसने 1% हमें ये नहीं कहा कि मुझे पकड़ के भाग ले जाओ, उसकी हाय हाय हमें खुद मजबूर कर दिया और हम उठे और हमने अपनी निशस्त छोड़ी और उसको पकड़ के बाहर जाके उस संदूक पे बिठाया। मेरे दोस्तों, जिसके अंदर रूह का और अल्लाह की जात को पाने का और उसके हबीब सरवरे कौनैन सल्लम को पाने का गम होता है ना, तो वो गम एक पैगाम देता है, और वो पैगाम ऐसा होता है कि दिल का दर्द दिल पे मुंतकिल होता है। हैं? उसकी कटोरी में रुपया पड़ा था नजर, उसको ना आया, लेकिन उसके दिल का दर्द ने मेरे दिल पे मुंतकिल हुआ नहीं हुआ। हैं? और बाजू का तो मरा हुआ किसी का होता है, और उसके मरे हुए पे रोने वालों के अंदर की जो कैफियत और गम होता है वो दूसरे को रुला देता है। तो गारी मिट्टी के गम ने आज हमें ये कर दिया, गारी मिट्टी के गम ने ये कर दिया। नफा हो गया तो फूल गए, नुकसान हो गया तो ब्लड प्रेशर लो हो गया, हाई हो गया, या जिस्म उसमें कमजोरी या बीमारियां या परेशानियां या मुश्किलात, दुनिया के एतबार से, मिट्टी के एतबार से, मिट्टी के आने से खुशी, मिट्टी के जाने का गम, ये तो आ गया। ऐसा ही रूह का हो जाए, आप यकीन जानिए ये चीज ला के देखो, मैं आज एक शर्तिया चीज बता रहा हूं, जिस दिन नेकी की खुशी और हकीकी खुशी, कौन सी खुशी, जिस दिन नेकी की खुशी और हकीकी खुशी, कि नेकी की और हकीकी खुशी, और गुनाह हुआ, गलती हुई चाहे छोटी या बड़ी, और उसका हकीकी हम, जिस दिन दिल के अंदर आ जाएगा ना, उस दिन अल्लाह जल्ला शान हो आंख उसे फरिश्तों को दिखाना शुरू कर देगा। क्यों? आप हैं आखिरी वक्त की उम्मती। वो पहला दौर था जब बड़ी बड़ी मुशक्कतें की जाती थी और बड़े बड़े मुजाहिदे किए जाते थे और बड़ी बड़ी कुर्बानियां की जाती थी कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर पड़ी। वो दौर था जिसमें खैरुल कुरून की बरकात शामिल थी, वो दौर था। और आज ये दौर है कि मुझे एक जिम्मेदार कहने लगे कि आज दौर ऐसा है कि कोई बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ ले और गुनाहों से बच जाए, वो वक्त का वली है। उस दौर की विलायत और थी, आज की विलायत और है, और वो दर्जा बदर्जा वली है। कोई छोटा, कोई उससे बड़ा, कोई उससे बड़ा, जितना अल्लाह का कुर्ब पाता जाएगा उसने दर्जा चढ़ता जाएगा। आज अगर ये एहसास पैदा हो जाए, जिस एहसास की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूं, आपको मुतवज्जे कर रहा हूं, ये एहसास पैदा हो जाए, नेकी की खुशी हो, और देखो खुशी अल्फाज का नाम नहीं, ना अल्फाज उसकी वजाहत कर सकते हैं, कर सकते हैं क्यों अल्लाह वाला, एक तामीर हो रही थी, जुमे की छुट्टी, तो जुमेरात के दिन जो है उसने कहा कि चलत चलनी है, चलत चलनी है, यानी पैसे ठेकेदार ने हमें देने हैं। अच्छा, मजदूर जो है उसने देख रहा था, 100-100 के नोट थे, वो गिन रहा था, फिर ऐसे लब लगाता नोट गिनता कि भाई कोई 2 नोट तक इकट्ठे तो नहीं हुए, गिनता, और गिन गिन के उसने एक पुराना सा छापर निकाला, उसमें नोट तय किए, उसके अंदर गत्ता रखा हुआ था वॉलेट पर्स के तौर पर, उस गत्ते में नोट रख के छापर में रख के ऐसे बड़ी एहतियात से किए। अब यकीन यानी मैं उसके चेहरे की कैफियत को पढ़ रहा था, उसके चेहरे के अंदर एक खुशी थी। याद रखना, अल्फाज की तर्जमानी होती है, जज्बात की तर्जमानी नहीं होती। खुशी मैं किन अल्फाज में बयान करूं, ये मेरे पास लफ्ज है ही नहीं। वो एक खुशी थी, पूरे हफ्ते की मेहनत, पूरे हफ्ते का खटिया वटिया अब मेरे हाथ पे आया, वो एक खुशी। मेरे दोस्तों, इसी तरह एक खुशी हो, जिस दिन हम गारी मिट्टी की जिंदगी से निकल के रूह की दुनिया में आएंगे, फिर नेकी करने में खुशी होगी, फिर इबादत करने में खुशी होगी, फिर एक दफा सुबहान अल्लाह कह दिया, खुशी हुई कि आज मैंने एक दफा सुबहान अल्लाह कह के जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगा दिया, अरबी नस्ल का घोड़ा तेज रफ्तार अगर उसके साये के नीचे 100 साल दौड़ता रहे तो भी उसका साया खत्म ना हो। अब आपने सुभान अल्लाह कहा, और यकीन से कह रहा हूं ऐसा हो गया। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा हो गया, मेरा अल्लाह उसका रसूल सच्चा, उनके वादे सच्चे, और उन्होंने जो फरमाया सच है। और मैं जो एक दफा कह दे अल्लाहु अकबर, एक दफा ऊंट लिया, उसको जबह किया, उसको जबह करके टुकड़े टुकड़े किया और सारा गरीबों मिस्कीनों में तकसीम कर दिया, एक दफा अल्लाहु अकबर कहने का ये कमाल है। और जो जो कह दे 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह, बस, और आखिर में पढ़ ले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं जमीन से लेकर आसमान तक जितनी भी खाली जगह है ये सारी उसकी नेकियों से भर जाती। कितनी है कायनात का कोई साइंस आज तक इहाता कर सकी ना कर सकेगी, मेरा रब ही जाने, खुदा की बातें खुदा ही जाने। नेकी करने पे एक खुशी हो, वो नेकी किसी की मदद के एतबार से, वो किसी की तकलीफ दूर करने के एतबार से, वो किसी इबादत के एतबार से, वो किसी मुशक्कत के एतबार से। जो तरावी का एक सजदा देगा, एक सजदा, हर सजदे पे अल्लाह जल्ला शान हो उसको जन्नत का एक महल अता फरमाएंगे, जिस महल के 70,000 कमरे होंगे और हर कमरे का 70,000 दरवाजा होगा और हर दरवाजे पे 70,000 गुलाम खुदाम कहेंगे मरहबा मरहबा। अब इसकी अकल तो छोटी, कहने लगे मैं तो एक खट की जगह मिल जाए। सैयद अमीन शाह गिलानी साहब से रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीर खुर्शीद अहमद शाह साहब से, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब पाकिस्तान बना तो उनको हजरत के मुरीदीन ने खत लिखा कि हजरत अब हम वहां जा नहीं सकते, फरमाया पाकिस्तान में मेरा नुमाइंदा जो है पीर खुर्शीद अहमद शाह साहब से वो है। तो कहने लगे कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब देखा तो ऐसे देखा बड़े बड़े महलात भी हैं और कुछ खेमे भी हैं। तो मैंने देखा कि शोरिश कश्मीरी मरहूम आया, तो मैंने कहा शोरिश तुम कैसे, कहने लगे जी वो बड़े बड़े महलात तो उलमा और अल्लाह वालों के लिए, अल्लाह ने हमें इन खेमों में जगह दे दी। वो क्यों, कहने शोरिश कहने लगा अल्लाह वालों के साथ रहता था, अल्लाह वालों की वजह से मुशक्कतें बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, नेकां दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जावा, तो अल्लाह ने हमें ये खेमा बस्ती दे दी जन्नत में ना, अल्लाह पाक ने हमें ये खैमा बस्ती दे दी है। कहने लगा शोरिश तू यहां रहा था। अब हमारी अकल तो छोटी, हम कहें कि हमें तो एक चारपाई की जगह मिल जाए जन्नत में बड़ी बात है। अच्छा अगर अकल इतनी ही है तो मैं उस दिन सोचने लगा, मैंने कि ये बड़े बड़े कनालों के फार्म हाउस क्यों बनाते हैं। हमारे उस दोस्त ने उस दिन बताने लगे जी मेरा चक शहजाद में, कहने लगे जी एक फार्म हाउस है वहाँ इतने कमरे, ये फला फला फला। उस दिन मैंने कपड़े पे पढ़ा एक मकान है बराए वो जो है किराए के लिए, हाउस फॉर रेंट, उसके 20 कमरे मैंने लिखा। मैंने कभी हमारे 2 कमरों की सफाई भी कर सकते हम, 20 कमरे में कौन रहेगा? 40-40 कमरों के मकान मैंने देखे हैं कराची में, क्लिफ्टन में। तो फिर रहना तो एक कमरे में ही होता है। अल्लाह पाक ने इस इंसान को चूंकि जन्नती मिजाज दिया है, जन्नत से आया हुआ ना, मिजाज जन्नती दिया है, और जन्नत में बड़े फूल पौधे और बड़े फार्म हाउस और झीलें और ये सारी, अब ये बनाने की वही मसनूई कोशिशें करता रहता है। वो कहने लगा यहाँ एक साहब का मकान है। मुझे कहने लगे, हम एक सफर में थे, हमारे मोहसिन हाजी अफजल साहब कहने लगे इसको हम मेरे मकान में ले आ। उन्होंने कहा ये नहीं आएगा। उसने कहा इसको दिखा, पता नहीं कि 70 कनाल में मेरा मकान है, एक एक पौधा 50-50 हज़ार रुपए का है, और मैंने कितने करोड़ों रुपए इस मकान से लगाए हैं, ये फिर इतना मकान क्यों बनाते हैं? अल्लाह पाक ने निज़ाम दिखाया है कि देखो दुनिया के एतबार से तुम अगर हिर्स है, बड़े से बड़ा मकान चाहते हो, बड़े से बड़ा मकान चाहते हो, तो आखरत के एतबार से इससे बड़े मकान तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा अपनी मशक्क़त आज मुझे दिखा दे। तो रमजान मुबारक जो आ रहा, इसमें अगर हम लगा ले तो उसमें एक फरहत हो, राहत हो। एक साहब कहने लगे ये रमजान शरीफ तो आ रहा सुभान अल्लाह, लेकिन दिल अभी से परेशान है, रोजा कैसे रखूंगा? कहने लगे बाकी कहने लगा रमजान की बड़ी फजीलते हैं। मैंने कहा हमारे एक अल्लामा साहब थे, वो नवाब ऑफ कल्लात के वजीर भी रहे, जामिया बासे के बुजुर्ग थे, मेरे परदादा को वो जानते थे, परदादा के साथ उनका 100 से साल ज्यादा, बल्कि उससे ज्यादा साल की उम्र में वो फौत हुए। परदादा की वो जो जद्दोजहद थी वे सारे जानते थे। वो कहने लगे कि एक पीर साहब गए, अब मुरीदीन भी साथ थे, अब एक मुरीद ने पीर साहब का जो है वो तारुफ कराया कि मेरे हजरत इतने बाकमाल हैं, इतनी नेकियां, इतना ताल्लुक, दुआ इतनी, बस कहने लगे दो कमी है, एक खाने के बेहया हैं, बाकी पीर साहब की बड़ी तारीफें करते 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 करते। उसने कहा बस थोड़ी सी चीज है इनमें, बाकी बिल्कुल ठीक ठाक है, बस एक खाने के बेहया हैं और थोड़ा सा जो है कोई थोड़ा सा हरीस है और थोड़ी सी गैरत की रत्ती नहीं है, बाकी बिल्कुल ठीक ठाक है, गैरत की रत्ती नहीं है, बाकी पीर साहब बिल्कुल ऐसे कमाल हैं उनकी आप पूछे नहीं। मैंने कहा तेरी कैफियत भी ऐसी है? कहते रमजान में ये मिलेगा, ये फजीलत, सुभान अल्लाह रमजान का महीना आ रहा, लेकिन मेरा जी घबरा रहा है। असल में उसके सामने मिट्टी गाड़ी की मुशक्कत से मिलना नजर आया हुआ है। उसे अगर कहा जाए कि ये ईंटे हैं पड़िए उठा के इधर रख ले, तुझे पाउंड और डॉलर इसी शक्ल में उजरत मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? अच्छा वो मैंने एक दफा वोटों में देखा, पापा बेचारा बिल्कुल कमजोर, उसको कुछ नजर नहीं आता, उसको कंधे में उठा के लाए। मुझे कहने लगे 500 में बात हो गई भाई, 500 मिलेगा, बाबे का वोट कास्ट करा दो। शनाख्ती कार्ड रात ले गए थे, शनाख्ती कार्ड रात ले गए थे, क्योंकि ये बात हमसे करे वोट कहीं और डाल दे। जिस तरह ये गारे और मिट्टी की दुनिया में की हकीकत हमें समझ आई है, इस तरह रूह की दुनिया को पाने में उसमें थोड़ी जो मुशक्कत है उसकी हकीकत समझ आ गई। ये अगर हाफिजों को पता चल जाए ना कि हमें तरावी में कुरान सुनाने में, कुरान सुनाने में क्या मिलेगा, फिर ये ना पूछे इंशाल्लाह मैं सुनूंगा, ये ना कहे, ये कहे मैं सुनाऊंगा। इनको आप हैरान होंगे, अब सोचें मेरी तरफ ज़रा तवज्जो करें। फरमाया जो मुअज्जिन की अजान का जवाब देगा, क्या जो मुअज्जिन कह रहा उसके पीछे कहे जा रहा हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना है, बाकी वही ये अजान का जवाब है। एक रिवायत ये आती है कि हर बोल पे 10 लाख नेकियां मिलती हैं। अल्लाहु अकबर बोल, अजान के तकरीबन 15 बोल शायद, कितने बोल हैं, हर बोल पे कितनी नेकियां। और एक रिवायत में पढ़ रहा था मैं कि हर हर्फ पे 10 लाख नेकियां मिलती हैं। अल्लाह के 4 हर्फ, अकबर के 4 हर्फ, अल्लाहु अकबर के कितने हर्फ हो गए, 8 हर्फ, 80 लाख ले क्या मिली। अब जिसके सामने ये बात खुली है कि मुझे तो ये नफा मिल रहा, इस्लाम ने कुछ मजबूरियां लिखी, अगर इस मजबूरी में हो तो अजान का जवाब ना दो, और अगर मस्जिद में बैठे हो, क्योंकि मौजन अजान है मस्जिद से बाहर वाले के लिए, जो मस्जिद में बैठा है वो अजान का जवाब ना दे तो उसको पकड़नी होगी, दे दे फजीलत है, सवाब है। अब जिसके सामने ये बात खुली हुई है कि अजान के इस जवाब में मुझे कितनी नेकियां मिलेंगी, और एक अल्लाह वाले फरमाते हैं मैंने जिंदगी का तजर्बा किया है, जो लोग अजान का जवाब देते हैं उनका आखिरी खात्मा बिलखैर हो, एक अल्लाह वाले की बात है, लाहौरी रहमतुल्लाह की बात है, कि जो अजान का जवाब देते हैं मैंने देखा है उनका खात्मा बिलखैर हो, आखिरी वक्त में कलमा नसीब। तो जिसके सामने नेकी की हकीकत खुल जाए, रुख की हकीकत खुल जाए, फिर वो सारी मुशक्कतें बर्दाश्त करेगा नहीं करेगा, उसके लिए फिर मुशक्कत मुशक्कत नहीं होगी, वो मुशक्कत सआदत होगी। मुझे एक मजदूर कहने लगा दिहाड़ी वाला, उसने कहा जिस दिन मेरा काम ना मिले, एक तो वैसे दिल परेशान हो जाता है कि मेरी दिहाड़ी ताजी वाला हो, बोला कहने लगा ताजी वाला यानी ताजा कमाना और ताजा खाना, और दूसरा कहने लगा मेरा बदन दुखता है, मेरा बदन आदी हो गया है मुशक्कत का। अरे जिसका बदन रूह की दुनिया आमाल का अल्लाह जल्ल शानहु के सामने ताल्लुक का आदि बन जाए, फिर उसको भी इबादत ना मिले तो उसका बदन भी दुखता है, उसका बदन भी दुखता है। नेकी के आने पे खुशी की इंतहा हो, और दिल के अंदर तकब्बुर ना हो, गुरूर ना हो, एक अंदर की एक खुशी होती है जिसके अंदर शुक्र होता है, जिसके अंदर शुक्र होता है। एक साहब कहने लगे मैंने 84 में अपने हजरत की रहमतुल्लाह अलैह से बैत की, 91 तक मेरा एक पल ऐसा नहीं गुजरा कि उन्होंने मुझे कोई हुक्म फरमाया हो और वो हुक्म ऐसा हो जो मेरी हैसियत से बढ़ के या बजहर मेरी हैसियत को गिराने वाला हो, झाड़ू का बैतुल खला का ये बजहर हैसियत को गिराने वाले हैं ना बजहर, या ऐसा जो मेरी हैसियत से बढ़ के हो। मैंने हर हुक्म को इतना खुशी से लिया इतना शुक्र से लिया कि इतना तो फरमा दिया, इस काबिल तो मुझे समझा, अपने मुर्शिद के हर हुक्म को इस तरह लिया, इतना फरमा दिया, इस काबिल तो समझा मैं, इस काबिल कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाइया साइया। जब मेरे दोस्तों रूह की दुनिया की कदरदानी बढ़ती चली जाएगी, फिर रूह वाले आमाल और रूहानी आमाल के करने में बोझ नहीं होगा, सआदत होगी। फिर हुक्म पे, चाहे वो अल्लाह का हुक्म है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, या हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी गुलाम का हुक्म है, फिर उस पे मेरे दोस्तों सआदत की कैफियत होगी, बोझ नहीं होगा, क्योंकि दुनियावी एतबार से हुक्म के करने पे, हुक्म के पे अमल करने से जो इसको मिलता है वो नजर आता है, और उखरवी नजर नहीं आता। आज आंखें बंद हैं, कल को आंख खुलने वाली है। अली करम अल्लाह फरमाते हैं कि मफहूम है कि सारे सो रहे हैं, उस वक्त जागेंगे जब मौत आएगी। सारे सो रहे हैं, अनकरीब जागने वाले हैं, और ये दुनिया ख्वाब नजर आएगी। ख्वाब में बादशाह के तख्त में बैठा और जब आंख खुली टूटी चारपाई पे सोया हुआ था, तो हकीकत तो चारपाई होती है या तख्त होता है, हकीकत तो चारपाई वही होती है ना, वही बिछौना होता है टूटा फूटा। अनकरीब ख्वाब इसका खत्म होने वाला है, अनकरीब। तो दुनिया बकदर मुशक्कत है या मुकद्दर है, मुकद्दर है। अब हाजिर नहीं बैठे, दुनिया बकदर بقدر مشقت ہے. ذمہ دار صنعتکار مالدار کا بیٹا تو نے دیکھا ہوگا مالدار ہوگا, پھر اس کا بیٹا مالدار ہوگا جب تک مقدر میں لکھا ہے. کسی ولی کتب ابدال غوث قلندر نقیب نجیب ابرار کسی درویش کا بیٹا اگر ایسا نہیں ہوں گے وہ جب تک کہ خود مشقت نہیں کرے گا. صاحبزادگی ورثے میں ملے گی کہ پیرزادگی ورثے میں ملے گی, پیر تھا پیر کا بیٹا پیرزادہ, نواب تھا نواب کا بیٹا نوابزادہ, لیکن یہ تو کہے کہ اللہ کا تعلق تجھے ورثے میں مل جائے وہ تو پھر بلال جیسا آئے گا جو بظاہر دنیا میں بے حیثیت و بے قیمت ہے. اگر کملی والے کا اس نے دامن تھاما ہے اور اس نے غلامی اختیار کی ہے اور غلامی اختیار کرنے کا حق ادا کر دیا ہے, اللہ کی قسم اللہ پاک کے عرشوں میں اس کی جوتیوں کی آٹ آ رہی ہے, آسمانوں پہ اوپر جا کے. اور یہ ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ والے نے, وہ لکھتے ہیں کہ کیا کیا کہیں یہ سمجھ نہ بیٹھنا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت صدیق سے, فاروق سے, عثمان سے اور علی کرم اللہ وجہ رضوان اللہ اجمعین سے بڑھ گیا ہے. اصل میں اللہ کے حبیب سرور کون ہے وسلم نے امت کو یہ بتانا چاہا کہ اس امت کے ادنا سے ادنا آدمی, بکتا ہوا غلام, بظاہر شکل و صورت میں حسن و جمال نہیں, حبشی ہے, اگر وہ بھی غلامی کملی والے کی اختیار کر لے تو اس کی بھی آہٹیں آسمانوں پہ جا سکتی ہیں. سمجھانا یہ تھا. تو جو روح کی دنیا کے لیے, روح کی دنیا کے لیے, روحانیت کے لیے, اللہ جل شانہ کے تعلق کے لیے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جتنا کھپے گا اتنا پائے گا, اور جتنا لگانا اتنا پانا, اور جتنا اس کے من میں احساس بڑھتا چلا جائے گا اتنا اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی حیثیت بڑھتی چلی جائے گی. یہ میرا لفظ یاد رکھیے گا, اللہ پاک کے ہاں اس کی حیثیت بڑھتی چلی جائے گی. ایسے گھر بن جائیں جس گھر میں مشورے شروع ہو جائیں کہ کس طرح ہم سارے کے سارے اللہ والے بن جائیں, گھر میں مشورے ہوں اور گھروں کی ترتیب ہو. بعض اللہ والے ایسے کہ گھروں کی ترتیب کہ رات کا ابتدائی حصہ والدہ اٹھے گی اور اللہ اللہ کرے گی, پھر وہ لیٹ جائے گی, رات کے آخری حصے میں والد اٹھیں گے, پھر رات کے آخری حصے کے آخری حصے میں بیٹے کو اٹھا دیا جائے گا. گھروں کی ترتیب کہ دن رات ان کا گھر روشن ہے اللہ جل شانہ کے ذکر سے, جو کہ آج ہماری مسجدیں نہیں ہیں, مسجدوں کو تارے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے مسجدوں میں ایسے سامان بھر دیے ہیں جس کو چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جس مسجد میں یہ سامان, قبرستان کی مسجدوں کو کبھی تارے لگے؟ میں نے تو نہیں دیکھا, اس میں وہ سامان ہوتا ہی نہیں, نہیں ہوتا. اللہ جل شانہ نے زندگی کی ایک مختصر ترتیب دی ہے, مختصر موقع دیا ہے. آپ جوان بوڑھے چھوٹے بڑے سارے بیٹھے ہیں. اللہ والو, نیکی کے ملنے پہ یہ ایک غم ہو اور نیکی کے چھوٹنے پہ, نیکی کے ملنے پہ خوشی اور نیکی کے چھوٹنے پہ ایک غم ہو. کہنے لگے بھائی مجھے نماز ہی پڑھوا دو, وقت ہو گیا جماعت کا, چلو آپ کی برکت سے میری جماعت کی نماز ہو جائے گی. تو کہنے لگا اس کے اندر احساس ہے جماعت کو پانے کا. ایک صاحب کو دیکھا ایسے نا خوشی خوشی اپنی قمیض ٹھیک کرتے ہیں, کبھی بازو ٹھیک کرتے ہیں, کبھی کالر یوں ٹھیک کرتے ہیں, کبھی اپنے سر کو یوں ٹھیک کرتے ہیں. بھائی کیا ہوا؟ راج کو خوش ہوئی دکھائی دے رہے, خیریت تو ہے, تو قارون کا خزانہ مل گیا.
कहने लगे मेरी दुआ कबूल हो गई आज। क्या दुआ कबूल हुई? कहने लगे मैंने अल्लाह से मांगा था, या अल्लाह सजदे में अपनी जात आली का ध्यान दे दे, बड़े अरसे के बाद आज पहला सजदा मिला जिसमें अल्लाह की जात का ध्यान दे। उसकी खुशी देखी, उसकी मसरत देखी, उसके दिल की कैफियात देखी, उसके चेहरे की कैफियात देखी, उसको तो ऐसी खुशी मिली कि अक्ल हैरान कि मुझे पहला सजदा ऐसा मिला जिसमें अल्लाह जल्ला शानहु की जाते आली का ध्यान मुझे मिल गया। तो नेकी के आने पे खुशी हो, ये पैमाना है इस बात का। सुन लो फकीर की बात को याद रखना, ये पैमाना है इस बात का, ये आखरत की मंजिल का राही है, खास अलामत है। नेकी के मिलने पे अगर खुशी हुई, नेक काम करने में खुशी हुई, नेकी के पाने में खुशी हुई, नेकों से मिलने में खुशी हुई, क्योंकि जब बंदा नेकी से जाता है तो नेकों से नफरत करता है और नेकों नेक मजालिस से उसकी तबीयत घबराती है, कहता है जितना जल्दी हो अगर मजबूरन बैठा हूं। एक चोर था, वो चोरी करके ना मस्जिद में गढ़ा करके उसमें छुपाए बैठा था और ऊपर बैठ के तस्बीह कर रहा था। एक बंदे ने ना मस्जिद की दीवार के साथ थूका, बहुत गुस्से से कहने लगा बड़ा बेअदब है, मजबूर बैठा हूं मैं तुझे आके अभी बता देता कि मस्जिद के अदब का तूने ख्याल नहीं किया, मजबूर बैठा हूं अन्ना तुझे आके अभी बता देता कि मस्जिद का यही अदब है कि मस्जिद की दीवार के साथ तू थूके और खुद चोरी दमन की मस्जिद बैठा। जब मेरे दोस्तों नेकी की कीमत आएगी दिल में, फिर नेकों की मजालिस अच्छी लगेंगी, उसमें दिल लगेगा, जी लगेगा, फिर पता ही नहीं चलेगा। उस दिन एक साहब कहने लगे, बस हम बातों बातों में आए, दोस्त थे आपस में, ऐसी बातें करते करते सफर कटते पता ना चले। हैं? अल्लाह पाक जब जी जाएगा ना नेकों की मजालिस से, कुरान पाक कहते हैं ना वदखुली फी इबादी वदखुली, ऐसे है जी, अल्लाह को माफ फरमाए। तो उन्होंने कहा कि ये कुरान भी कहता है कि नेकों की मजालिस को बयान कर रहा। उन्होंने कहा जब जन्नती जाएगा ना, अल्लाह का नेक बंदा नेकों की मजालिस में बैठा हुआ नेकी को तलाश करने वाला, और जब ये कब्र में जाएगा तो अल्लाह जल्ला शानहू उसे जो है ऐसी मजालिस देंगे। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि अल्लाह पाक हूर देंगे, उसके उसके हार को हाथ लगाएगा, वो टूट जाएगा और हार वो दोनों बैठ के चुनना शुरू कर देंगे। इधर हार चुनते ही पूरा होगा कि क्यामत आ जाएगी, यूं पल गुजर जाएगा। जैसे कहने लगे दोस्त बैठे थे, बस गाड़ी में आए, ऐसे बातें करते करते सफर करते पता ही ना चला। तो फिर ये नेक मजालिस, नेकी को पाने वाली मजालिस, इसको अच्छा लगना शुरू हो जाएंगी, अच्छी लगना शुरू हो जाएगी, फिर इसमें उसको मजा आएगा, फिर इसमें उसको राहत मिलेगी इन मजालिस। और जब इसके मिजाज में नेकी नहीं होगी, फिर नेकों से नफरत होगी, नफरत होगी, तबीयत जो है वो एक तरफ जाएगी। जो दिल में होता है ना, दिल उसी को चाहता है, हैं? जो दिल में होता है दिल उसी को चाहता है। तो रूह की दुनिया को अपना मकसूद बनाए। एक साहब कहने लगे मैंने तरक्की का राज बताऊं अपनी तरक्की का, आज आप कहते मैं इतनी बड़ी तरक्की पे हूं, मुझे 32 साल हो गए ये काम करते करते, रोज मैंने अपने काम को खुद चेक किया है, अपना हिसाब खुद किया है और एहसास किया है कि मैंने यहां कमी की है, ठीक है कल दफ्तर आऊंगा ये कमी नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ के चले जाते थे, मैं कहता था नहीं मैंने वो कमी पूरी करनी है, काम पूरा करूंगा। मेरे काम को करते 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 मुझे तरक्कियां मिलनी शुरू हो गई। इसी से सीख ले, रोज अपनी नमाज का हिसाब करना शुरू कर दे, फजर की नमाज में मेरी यह कमी थी, सजदे में यह कमी, रुकू में यह कमी, तिलावत में यह कमी, अल्फाज में कमी, तस्हीब सलाम में यह कमी, अच्छा आप जोहर में यह कमी नहीं करूंगा। आज कुरान पाक पढ़ा था लेकिन लफ्ज पढ़े थे उसके अंदर की रूह नहीं पाई। कल कुरान पाक पढ़ू चाहे सफा दो सफे पारा दो पारे लेकिन उसकी रूह पाऊंगा। आप रोज ये अपनी अपनी खामियों को की इस्लाह करना शुरू कर दें। उसने मुझे एक साहब कहने लगे, उन्होंने कहा जी हमने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले उस बंदे की नमाज खत्म हुई, एक पल में सजदे दिए यूं। मुझे कहने लगा हम पहले बचपन में ना वो कलाबाजियां लगाते थे ऐसे यूं सर करके ना यूं टांगे ऊपर फिर उधर जाके पढ़ते थे। कहले उसने ये कलाबाजियां लगाई और फारिग होके बैठ गया जल्दी जल्दी। कहने लगे इस शख्स को मैंने दफ्तर में देखा, बैंक में काम करता है, दफ्तर में देखा और दफ्तर में एक एक फार्म की एक एक जुज के पूरा करता है। अगर यहाँ कमी रह गई तो ये फार्म ना मुकम्मल होगा, जब मेरी शिकायत भी होगी इसका काम भी नहीं होगा। एक एक चीज को पूरा करता नहीं करता, जिसे कहते हैं फॉर्मेलिटी। एक एक फार्म को उसका खाना उसकी अंदराज वो रजिस्टर में दर्ज करना है, फला जगह दर्ज करना है, फला जगह दर्ज करना है, फिर आपको पैसे मिलेंगे या आपके पैसे दाखिल होंगे जो भी होगा। कहने लगा वहां मैंने दफ्तर में इस शख्स को देखा बड़े एहतमाम से बड़े सलीके से और अल्लाह के सामने जब आता है और ऐसे आता है जिसने नमाज को ज़बह कर दिया और ये नमाज इसकी बददुआ करती जाती है और नमाज की बददुआ के पहला समरा बताऊं आपको आज ये आप तजर्बा कर लें, ना तजर्बा करना हो तो ऐसा कर लें। नमाज की बददुआ होती है, दुआ भी होती है। नमाज की सबसे पहली जो बददुआ होती है वो ये कहती है नमाज अल्लाह इसके दिल को वीरान कर। क्यों? नमाज दिल का नाम है, जिस्म का नाम नहीं है। नमाज किस चीज का नाम है? दिल का नाम है ना। जिस्म तो वो अदाएं हैं जो मेरे आका ने की हैं, वो उन्हीं अदाओं को कर रहा। असल तो हुजूरी कल्ब का नाम नमाज है ना अल्लाह वालों। ये फकीर की बात याद रखिएगा, ये मैं किसी अल्लाह वाले की बात अर्ज कर रहा हूं, बड़े किसी की बात कह रहा हूं। नमाज जो सबसे पहले बद्दुआ देती है, हदीस में आता है बद्दुआ देती है आसमान पे चली जाती है, नमाजी के मुंह मफहूम अर्ज करो नमाजी के मुंह पे मार दी जाती है, पुराने कपड़े की तरह लपेट के नमाजी के मुंह पे मार दी जाती है। नमाज जो सबसे पहले बद्दुआ देती है और वो ये देती है जो नमाज को ज़बह करता है। कहने लगे तू फर्ज पढ़, फर्ज पढ़। अरब थे हमारे वहां मदीना मुनवरा में शेख इमाद। मैंने कहा तू नमाज? कहने लगा फकत फर्ज। मैंने कहा भाई वो उसकी एक बात एक तरह ठीक थी लेकिन सुन्नतें उसके लिए जरूरी वाजिबात भी हैं। कहने लगे मैं फर्ज को ऐसी शानदार पढ़ता हूं आप उसका गुमान नहीं कर सकते। तो नमाज सबसे पहले जो बद्दुआ देती है और नमाज की बद्दुआ कबूल होती है, नमाज की दुआ होती है, नमाज की बद्दुआ होती है, याद रख। कहते हैं अल्लाह इसके दिल को वीरान कर। अरे उसमें उसके वीरानी की दो अलामत शुरू हो जाती है। एक अलामत यह है कि उसके अंदर ताआत की यानी इबादात की तौफीक आहिस्ता आहिस्ता छिनना शुरू हो जाती है।